जिसके दरवाजा एक झटके में ही टूटकर नीचे गिर जाती है, जिसे देख रुद्र अंदर की तरफ जाता है। लेकिन अंदर जाते ही जब वे अंदर का नजारा देखता है तो उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है। सिंघानिया विला। रुद्र जब दरवाजा तोड़ अंदर जाता है तो उसे कहीं भी अपनी रूह नहीं दिखती। तभी उसकी नजर खुली हुई खिड़की पर जाती है, जिसे देख उसे समझते देर नहीं लगती है कि उसकी रूह इस खिड़की से भाग गई है। जिसे सोच रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वे अपनी लाल आंखों के साथ ही बोला, रूह, ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। पहले तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, अब तुम यूं भागकर दूसरी गलती की है। रूह, अब तुम्हें मेरी सजा से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें तो मैं अपनी कैद में इस कदर कैद कर लूंगा कि तुम उठने, बैठने, आने जाने के हर एक चीज के लिए मुझसे परमिशन लोगी। इतना बोल रुद्र गुस्से में अपना फोन निकालता है और किसी को कॉल कर कुछ समझा कॉल कट कर देता है और एक खतरनाक स्माइल के साथ बोला, रूह, जितना भागना है जहां भागना है भाग लो, क्योंकि अंत में तुम्हें आना तो मेरे पास ही है। इतना बोल वे उस कमरे से निकल अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूही, मीशा, परी, सुमन, प्रीता सब मेहंदी लगवा चुकी थी, जिसे देख सुमन जी मीशा को देख कहती हैं, मीशा बेटा, तुम गेस्ट रूम में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, फिर तुम्हें शादी के लिए भी तैयार होना है। मैंने ब्यूटिशियन को यहीं बुला लिया है तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुमन की बात सुनकर मीशा भी मुस्कुराते हुए हाँ बोल देती है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए सब आराम करने चले जाते हैं। वहीं रूही जब देखती है कि सब जा चुके हैं तो वे भी धीरे से सिंघानिया विला के बाहर निकल जाती है और ऑटो लेकर एक पार्क के लिए निकल जाती है जो थोड़े सुनसान एरिया में बना हुआ था। रूही उस पार्क में पहुंच वहां के आखिरी सीट पर जा बैठ अपनी आंखें बंद कर लेती है। रूही इस जगह पर हमेशा आया करती थी क्योंकि इस जगह पर बहुत कम लोग आते थे, जिस वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा शांति रहती थी और यहाँ का हरा भरा गार्डन और खूबसूरत सा फूल उसे काफ़ी ज़्यादा सुकून देते थे। रूही अपनी आंखें खोलती है और उस खूबसूरत फूलों को देखने लगती है, जिसे देख वे उन खूबसूरत फूलों के पास आ उनके बीच लेट जाती है और अपनी आंखें सुकून से बंद कर लेती है। इस समय वे सब कुछ भूल चुकी थी जो जो रुद्र ने उसके साथ किया था। वे सब रूही अपने दिमाग के निकाल बस उन फूलों की खुशबू को महसूस करने लगती है और ऐसा करते करते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। शाम के वक्त रूही की आंखें अचानक ही खुलती हैं। वे देखती है कि शाम हो गया है और कुछ ही देर में रात भी हो जाएगी, जिसे देख रूही तुरंत खड़ी होती है और उस पार्क से निकल ऑटो ले अनाथ आश्रम चलने को बोलती है। वे ऑटो वाला, जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, वे हल्का मुस्कुराता है और रूही की तरफ देख उसके चेहरे के पास कुछ स्प्रे कर देता है। रूही कुछ समझ पाती उसके पहले ही उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और कुछ ही पल में वे बेहोश हो जाती है, जिसे देख वे ऑटो वाला किसी को कॉल करते हुए बोला, बॉस, काम हो गया। ऑटो वाले के इतना बोलते ही उधर से कुछ बोला जाता है, जिसे सुन ऑटो वाला सर हाँ में हिला ऑटो स्टार्ट कर रूही को ले कहीं चला जाता है। उस ऑटो के पीछे एक ब्लैक कलर की कार भी थी जिसमें चार बॉडीगार्ड थे, दो लड़के और दो लड़कियां। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला में देवांश का रूम। दिशा को काम करते हुए शाम हो गया, जिसका दिशा को पता ही नहीं चला। दिशा अपने काम को करने के बाद जब अपनी घड़ी में टाइम देखती है तो शॉक हो जाती है। इस समय शाम के 6:30 बज रहे थे और कुछ ही समय में रात होने वाली थी, जिसे देख दिशा अपनी जगह से उठते हुए देवांश की तरफ देखकर बोली, सर, मैंने सब कुछ सही कर दिया है, अब इस फाइल में सब कुछ सही है, अब मैं चलती हूँ वरना जी घर जाने में लेट हो जाएगा। दिशा की बात सुनकर देवांश दिशा को शांत कराते हुए बोला, मिस दिशा, सबसे पहले आप शांत हो जाइए और आपको अभी कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में भाई की शादी होने वाली है और आप शादी अटेंड करके ही यहाँ से जाएंगी, उसके पहले मैं आपको जाने नहीं दूंगा, इसलिए आप जाइए और गेस्ट रूम में शादी के लिए तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए कपड़े भिजवाता हूँ। देवांश की बात सुनकर दिशा बोली, लेकिन सर, मुझे घर जाना है, मैं इस शादी में कैसे रुक सकती हूँ। दिशा की बात सुनकर देवांश अपनी कड़क आवाज में बोला, मिस दिशा, अब मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मैंने आपसे पूछा नहीं बताया है कि आप भी शादी में रुक रही हैं, और आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ आपको ही रुकने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने ऑफिस में काम कर रहे बहुत से एम्प्लॉय को बुलाया है, इसलिए आप भी मेरे ऑफिस की एम्प्लॉय होने के नाते रुक रही हैं। आप चाहें तो शादी होने के बाद यहाँ से जा सकती हैं, पर शादी तक तो आपको रुकना ही होगा। देवांश की बात सुनकर दिशा कुछ भी नहीं बोलती और हाँ मैं सिर हिला देवांश के कमरे से निकल रूही को ढूंढने लगती है। कुछ देर में सब जगह रूही को ढूंढने के बाद जब उसे रूही कहीं भी नहीं मिलती तो दिशा खुद से ही कहती है, शायद रूही परी के साथ उसके रूम में होगी, मैं एक बार परी के कमरे में देख कर आती हूँ। इतना बोल वे परी के कमरे में जाने ही वाली थी कि तभी एक नौकरानी वहां आ दिशा को कपड़े देते हुए कहती है,
मैम, ये कपड़े, ज्वेलरी और कुछ मेकअप का सामान दीवान सर ने आपको देने के लिए बोला था। उस नौकरानी की बात सुनकर दिशा सर हाँ में हिला, नौकरानी से वे सारे सामान ले लेती है। फिर रूही से बाद में मिलने का सोच गेस्ट रूम में रेडी होने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीशा इस समय दुल्हन का लाल जोड़ा पहने बैठी हुई थी और कुछ लड़कियां मीशा को तैयार कर रही थी, जिसे देख मीशा उन लड़कियों को देखकर बोली, मेरा मेकअप इस तरह से करना कि आज मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत लगूं। लोग मुझे देखें तो देखते ही रह जाएं। और उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकले कि आज के पहले मैंने इतनी खूबसूरत दुल्हन कहीं नहीं देखी। खास तौर पर मेरे होने वाले हस्बैंड रुद्र सिंघानिया की नजर तो मुझसे बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए। इस तरह से मेरा मेकअप करो कि आज रुद्र मुझे देखे तो सिर्फ देखता ही रह जाए। मीशा की बात सुनकर वे मेकअप आर्टिस्ट हल्का मुस्कुराते हुए बोली, मैम आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आपका मेकअप इस तरह से करेंगे कि सर आपको देखते ही पलके झपकाना ही भूल जाएंगे। आप आज दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगेंगी।
मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर मीशा खुश हो जाती है। वहीं मेकअप आर्टिस्ट मीशा का फिर से मेकअप करना स्टार्ट कर देती है।